समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे अब तक देश दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। कार्यक्रम के आज के अंक में मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं अनीता आनंद। गुड मॉर्निंग अनीता।
गुड मॉर्निंग विशाल एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर फॉरएवर एक्साइटिंग डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे Wherein over the next half an hour we shall bring you the latest in national international news, metro city updates as well as some historical information related to this day, that is the 18th of March. So let's begin with the headlines first, Vishal.
जी अनीता, शुरुआत सबसे पहले प्रमुख समाचारों से कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के जगतियाल के गीता विद्यालम मैदान में विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में निजामाबाद, करीमनगर और पेडापल्ली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का बीते पांच दिनों में तेलंगाना में यह तीसरा कार्यक्रम है। इससे पहले उन्होंने देश के दक्षिणी क्षेत्र में अपने पांच राज्यों के दौरे के हिस्से के रूप में मलकाजगिरी में एक बड़े रोड शो में हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री ने दो दिन पहले नगर कुरनूल में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया था।
The Indian Army contingent departed for Seychelles yesterday to participate in the 10th edition of Joint Military Exercise Lamitia 2024 between the Indian Army and Seychelles Defence Forces SDF. The joint exercise will be conducted at Seychelles from today till the 27th of this month. Lamitia, meaning friendship in the Creole language, is a biennial training event and has been conducted in Seychelles since 2001. 45 personnel from the Gurkha Rifles of the Indian Army and SDF will participate in the exercise. The Defence Ministry said the exercise aims to enhance interoperability in sub-conventional operations in semi-urban environments under Chapter 7 of the United Nations Charter on Peacekeeping Operations. It said the exercise will enhance cooperation and interoperability between both sides during peacekeeping operations. The exercise will also build and promote bilateral military relations in addition to exchanging skills, experiences and good practices between both armies. Both sides will jointly train, plan and execute a series of well-developed tactical drills for neutralization of likely threats that may be encountered in the semi-urban environment while exploiting and showcasing new generation equipment and technology. The 10-day-long joint exercise will include field training exercises, combat discussions, lectures and demonstrations. It will culminate with 2 days of validation exercises. Defence Ministry said the exercise will contribute immensely in developing mutual understanding and magnifying jointness between the troops of both the armies. It said the exercise will also foster collaborative partnership and help in sharing best practices between the two sides.
स्टार्टअप महाकुंभ आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। ये कार्यक्रम 20 मार्च तक चलेगा। इस आयोजन में विभिन्न स्टार्टअप के अलग अलग पवेलियन होंगे जिनमें एआई, बी2बी, एग्रीटेक, डीप टेक, क्लाइमेट टेक, गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, फिनटेक जैसे अनेक विशेष पवेलियन शामिल होंगे। इस महाकुंभ का उद्देश्य पूंजीपतियों और निवेशकों को भारतीय व्यापार के साथ जोड़ना है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र का देश है और नए स्टार्टअप की सूची में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। इस स्टार्टअप महाकुंभ में 2000 से अधिक स्टार्टअप, हजारों निवेशक, 30,000 भावी उद्यमी और विश्वस्तरीय प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे।
National Testing Agency NTA will conduct CUET-UG exam between 15th and 31st of May as announced earlier. In this period, two dates overlap with the general election dates on 20th and 25th of May. UGC Chairperson M. Jagdish Kumar said in a social media post that after the last date for filling out applications on 26th of March, the number of students registered for CUET, UG and their geographical distribution will be known. He said that based on this data and the election dates, NTA will announce the date sheet for CUET, UG exam between 15th and the 31st of May. Election Commission uploaded the data received in the digitized form from the Registry of Supreme Court on Electoral Bonds on its website yesterday. The data can be accessed at the Commission's website. The EC said in a statement that political parties had filed the data on the electoral bonds in a sealed cover as detected by the Supreme Court. The data received from political parties was deposited in the Supreme Court without opening the sealed covers. In pursuance of the Apex Court's orders, on the 15th of March this year, the Registry of the Supreme Court had returned the physical copies with a digitized record of the same in a pen drive in a sealed cover.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 63 दिनों की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल मुंबई में संपन्न हो गई. इस अवसर पर उन्होंने डॉ बीआर अंबेडकर को उनके स्मारक चैत्य भूमि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और संविधान की प्रस्तावना पढ़ी. उन्होंने कहा कि उन्हें चुनौतीपूर्ण भारत जोड़ो यात्रा इसलिए शुरू करनी पड़ी क्योंकि मीडिया बेरोजगारी महंगाई जैसे वास्तविक मुद्दों को नजरअंदाज कर रहा था. राहुल गांधी मुंबई के प्रतिष्ठित शिवाजी पार्क में इंडी गठबंधन की एक रैली को संबोधित कर रहे थे. गठबंधन के प्रमुख नेताओं में एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता चंपई सोरेन, राजद नेता तेजस्वी यादव और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला शामिल हुए. प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड में अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया है. श्री केजरीवाल को धनशोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत बयान दर्ज कराने को भी कहा गया है. पीएमएल के तहत यह दूसरा मामला है जिसमें श्री केजरीवाल को समन जारी किया गया है. निदेशालय दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए उन्हें पहले ही कई समन भेज चुका है. श्री केजरीवाल निदेशालय के 8 समन को गैर कानूनी कहकर टाल चुके हैं. निदेशालय ने आबकारी नीति मामले में नवी बार समन जारी कर उन्हें 21 मार्च को पेश होने को कहा है.
Russian President Vladimir Putin has clinched a historic fifth term, securing a landslide victory in the presidential polls. Mr. Putin hailed his preordained electoral victory as a sign of the country's trust and hope in him. He claimed another six-year term by getting 87% of the votes, with 80% of the precincts counted. Election officials said other candidates languished below 5%. Communist candidate Nikolai Kharitonov finished second and newcomer Vladislav Davankov third. This victory has solidified Mr. Putin's position as Russia's longest-serving leader, surpassing Joseph Stalin. Mr. Putin's supporters told supporters in a victory speech in Moscow that he would prioritize resolving tasks associated with what he called Russia's military operation in Ukraine and would strengthen the Russian military.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्रीनगर में डल झील तट पर आयोजित पहले फार्मूला 4 कार शो से भविष्य में जम्मू कश्मीर की सुंदरता और प्रगति देखने को मिलेगी. एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये भारत मोटर स्पोर्ट्स को फलने फूलने का बेहतरीन अवसर प्रदान करता है. पहला फार्मूला 4 कार शो कल श्रीनगर के डल झील के तट पर आयोजित किया गया.
In the final of the Women's Premier League WPL cricket, Royal Challengers Bangalore RCB beat Delhi Capitals by 8 wickets at Arun Jaitley Stadium in New Delhi last night, chasing a target of 114 runs set by Delhi Capitals. RCB scored 115 for 2 in 19.3 overs. For RCB, Alyssa Perry was the highest scorer with 35 runs, followed by Sophie Devine with 32 and Smriti Mandhana 31 runs. Earlier, deciding to bat first, Delhi Capitals were all out for 113 runs in 18.3 overs. For Delhi Capitals, Shefali Verma was the top scorer with 44 runs. For RCB, Shreyanka Patel picked up 4 wickets. Sophie Molyneux 3. Shobhana Asha took 2 wickets. Sophie Molyneux was declared player of the match.
और अब समय है प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों को जानने का। तो अनीता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद से क्या खबरें हैं आपके पास?
दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बाय कंट्रोलिंग द रोल ऑफ अनअकाउंटेड फंड्स बाय हैविंग अ स्पेशल कंट्रोल रूम। दी इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टरेट विल टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स to discover and seize unaccounted funds intended to be utilized for electioneering. As part of this initiative, the Director General of Income Tax Tamil Nadu and Puducherry has also said that a toll-free telephone number, a designated email and WhatsApp will receive complaints and information from the public. Persons who have knowledge and information about storage, possession or movement of large amounts of cash, jewellery or other valuables are requested to pass on the information through any of the modes. The Directorate of Public Health and Preventive Medicine has released an advisory for the public to look out for the symptoms of measles, mumps and chickenpox with the onset of the summer season. The public have been asked to drink enough water, coconut water and fruit juices frequently to protect them from heat strokes and avoid sun during the daytime. As this is the exam season, the public have been asked to protect the children by taking all measures to keep them away from the contagious diseases. Karnataka Chief Electoral Officer Manoj Kumar Meena held a meeting with the representatives of different political parties in Bengaluru today on the Model Code of Conduct guidelines. He appealed to them to educate people on the need to enroll themselves in the electoral roll. He said that the political parties can use the Suvidha app to get necessary clearances for the election campaign. Manoj Kumar Meena also said that the commission will help voters to set right anomalies, if any, in the voters' EPIC cards or if there is an address change. He called upon the voters to set right the anomalies so that they can cast their votes seamlessly on the election day. He informed that the changes can also be made online or through the apps introduced by the Election Commission. He also sought their support in reporting Model Code of Conduct violations by posting photos and videos of any violations through the C-Vigil app. He also asked the physically challenged voters to register in the Saksham app to get free pick-up and drop facilities and other assistance on the day of voting. He further said that the voters can call up 1950 for any assistance and information. In Telangana, BJP leaders have made all arrangements for Prime Minister and BJP senior leader Narendra Modi's Vijay Sankalp Sabha at Jagtial this morning. Mr. Modi will address public meeting at Geeta Vidyalayam grounds at around 11:30 a.m. today. BJP candidates from Nizamabad, Karim Nagar and Pedapalli parliamentary constituencies will also attend the meeting. Lok Sabha member Arvind Dharmapuri and party's Nizamabad district president K. Dinesh Kumar reviewed the arrangements for the public meeting. And now for news from Delhi, Mumbai and Kolkata, over to Vishal.
अनीता, दिल्ली की खबरों की बात करें तो निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू हो गई है। इसके मद्देनजर राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में पोस्टर, पर्चे, वॉल पेंटिंग और इस तरह की सभी प्रचार सामग्रियों को हटाया जा रहा है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी चुनाव को लेकर मतदाताओं के बीच कई जागरूकता कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से वायु गुणवत्ता का स्तर लगातार मध्यम श्रेणी में बना हुआ है। कल शाम 6 बजे के करीब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार समग्र दिल्ली क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 188 रिकॉर्ड किया गया। 0 से 50 के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक और 101 से 200 के बीच मध्यम माना जाता है। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए एक 3 वर्षीय गुमशुदा बच्चे को उसके परिवार से मिलवाया। कोटला मुबारकपुर पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों के अथक प्रयासों के बाद टीम को लापता बच्चा राजधानी के पिलांजी क्षेत्र में मिला। पुलिस ने बताया कि बच्चे की पहचान उसके परिवार द्वारा की गई और परिवार को बच्चा सुरक्षित सौंप दिया गया। रुख करते हैं मुंबई का। प्रवर्तन निदेशालय मुंबई जोनल कार्यालय ने नकली पेंटिंग बेचने के मामले में मुंबई में 6 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। एजेंसी ने रविवार को एक बयान में कहा कि तलाशी अभियान 13 मार्च को चलाया गया था। अधिकारी ने बताया कि तलाशी कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिण मुंबई में एक प्रमुख आर्ट गैलरी, जाने माने कॉरपोरेट वकील और सर्राफा व्यापारियों से जुड़े गिरोह का खुलासा किया। मूल चित्रों की नकली कलाकृतियों को वास्तविक कलाकृतियों के रूप में पेश किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने ताड़देव पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की थी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई 1992 के सांप्रदायिक हिंसा और 1993 के विस्फोटों के दौरान मारे गए या लापता लोगों के कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजा देने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार ने 14 मार्च को एक अपील पत्र जारी किया था जिसमें सांप्रदायिक हिंसा और विस्फोटों के बाद जान गंवाने वाले या लापता हुए लोगों के कानूनी उत्तराधिकारियों से अगले महीने के भीतर शहर और उपनगरीय कलेक्टरों के कार्यालयों में संपर्क करने का आग्रह किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने नवंबर 2022 में अपने एक आदेश में महाराष्ट्र सरकार को दिसंबर 1992 में सांप्रदायिक दंगों और मुंबई में मार्च 1993 में बम विस्फोटों के बीच की अवधि के मृतक या लापता व्यक्तियों के कानूनी उत्तराधिकारियों का पता लगाने और मुआवजा देने का निर्देश दिया था। अब समाचार कोलकाता से। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान SRFTI, NFDC और नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से रविवार को कोलकाता में पुरानी फिल्मों को इकट्ठा करने, अलग करने और पुनर्स्थापित करने के लिए एक पहल का आयोजन किया। इस पहल का नाम आर्काइविंग क्यूरेशन एंड रेस्टोरेशन है। SRFTI कोलकाता में 7 दिनों तक संगीत SRFTI कोलकाता में 7 दिनों तक फिल्म महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। इसे फेस्टिवल ऑफ रिस्टोर्ड फिल्म्स नाम दिया गया है। इस अवसर पर 1921 की मूक फिल्म बेहुलवा का प्रदर्शन किया गया। तो ये तो थे अब तक के मेट्रो समाचार। और अब जानकारी मौसम की। सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम का हाल आपको बताया देते हैं। आम तौर पर आसमान आज साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में दोपहर या शाम के समय बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बौछारें भी पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 26 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 33 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 23 डिग्रीज एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 21 degrees and a maximum of 34 degrees Celsius.
मौसम के बाद अब बारी है इतिहास के बारे में जानने की और ये जानने की कि आज के दिन यानी 18 मार्च की तारीख को इतिहास में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी जिन्होंने अपना एक अलग प्रभाव छोड़ा। आज ही के दिन 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने बर्मा की सीमा पार की थी।
एंड गोइंग बैक अ लिटिल, इन द ईयर 1915 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंडियन सिक्योरिटी एक्ट टू हैव ग्रेटर कंट्रोल ऑन द इंडियन पीपल। इन द ईयर 1919 प्रोटेस्ट अक्रॉस द नेशन वर स्पार्क्ड बाय द राउलट एक्ट विच एम्स टू मेंटेन द अनप्रेसिडेंटेड पावर्स दैट द गवर्नमेंट अंडर लॉर्ड चेम्सफोर्ड enjoyed during the war. In 1915, Indian Security Act, which limited the independence of the Native Americans, was replaced by the Rowlatt Act by force. And in the year 1948, the Socialist Party of India, SPI, breaks its ties with the Indian Congress.
जी। और 1965 में आज के दिन सोवियत संघ के वायुसेना पायलट एलेक्सी लियोनोव ने पहली बार स्पेस वॉक किया था।
In the year 1972, the National Book Trust held their first Indian Book Fair in New Delhi.
और 18 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार परिषद के गठन का प्रस्ताव मंजूर किया था। तो ये तो बात हुई प्रमुख घटनाओं की इतिहास में आज के दिन यानी 18 मार्च के दिन दर्ज प्रमुख घटनाओं के बारे में। और अब याद करते हैं उन व्यक्तित्वों को जिनकी आज पुण्यतिथि है या फिर आज ही के दिन जिनका जन्म हुआ था।
एंड टुडे वी बिगिन विद बाय रिमेम्बरिंग द इंडियन एक्टर फिल्म प्रोड्यूसर बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क्स इन हिंदी फिल्म्स। वी आर टॉकिंग अबाउट शशि कपूर बॉर्न एज बलबीर राज कपूर, रिसिपियंट ऑफ सेवरल एक्लेड्स इंक्लूडिंग 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स एंड 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स। ही ऑल्सो फीचर्ड इन अ नंबर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म इंटरनेशनल फिल्म्स, particularly film produced by the Merchant Ivory. The Government of India honored him with the Padma Bhushan in the year 2011 and the Dada Saheb Phalke Award in the year 2014 for his contribution to Indian cinema. And talking about his background a bit, he was the third and the youngest son of Prithvi Raj Kapoor. He began his career as a child actor in the year 1948 with the brother Raj Kapoor's maiden directorial film Aag, and had his first role as an adult in the year 1961 with Yash Chopra's political drama Dharma Putra.
और साल 1965 शशि कपूर के सिने करियर का एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ। इस साल उनकी फिल्म जब जब फूल खिले प्रदर्शित हुई। बेहतरीन गीत संगीत और अभिनय से सजी इस फिल्म की सफलता ने शशि कपूर को स्टार के रूप में स्थापित कर दिया और फिल्म को सुपरहिट बनाने में इस फिल्म के गानों ने बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाई। साल 1965 में शशि कपूर के सिने करियर को की एक और सुपरहिट फिल्म वक्त रिलीज हुई। इन फिल्मों की सफलता के बाद शशि कपूर की छवि रोमांटिक हीरो की बन गई। शशि कपूर ने लगभग 200 फिल्मों में काम किया और इनकी प्रमुख फिल्मों का अगर हम नाम लें तो जब जब फूल खिले, आ गले लग जा, रोटी कपड़ा और मकान, शर्मीली, दीवार, कभी कभी, सिलसिला और सत्यम शिवम सुंदरम इनकी प्रमुख फिल्मों में गिनी जाती हैं।
जी, एंड आफ्टर हिज सुपर हिट्स ऑफ वक्त एंड जब जब फूल खिले, देयर वाज आल्सो अ पीरियड विशाल ऑफ ल्यूकवॉर्म सक्सेस विद द फिल्म्स लाइक कन्यादान, शर्मीली या गले लग जा, this film being the exception, and he made a big comeback in the year 1974 with Chor Machaye Shor. First we listen to a song from the film Kanyadan.
Likhe jo khat tujhe wo teri yaad mein hazaron rang ke nazare ban gaye, savera jab hua to phool ban gaye, jo raat aayi to sitare ban gaye. लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल में ये तू आई, कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में।
विद द सक्सेस ऑफ चोर मचाए शोर ही बिकेम द टॉप 5 to 6 saleable stars of the period and delivered top grossing films such as Vishal mentioned, Roti Kapda Makan, Diwar, Chori Mera Naam, Kabhi Kabhi, Fakira, Trishul, Suhaag, Kranti and Namak Halal. He received critical acclaim for his portrayal of a reckless chieftain in the film Junoon, which he also produced. A businessman he played in Kaliyug and a strict father in Vijeta and an honest journalist in New Delhi Times, for which he won National Award for Best Actor. The last film to feature him was the much-delayed Ghar Bazaar, which released in 1998. I have a snippet of a song from the film Junoon.
सावन की आई बहार रे, सावन की आई बहार।
Today is the birthday of Ratna Pathak Shah, the Indian actress and director known for her work in Hindi theatre, television and also films. Her extensive work in theatre includes a series of plays in both English and Hindi. And she rose to prominence when she appeared in the hit TV serial Idhar Udhar in the 1980s. She garnered widespread recognition and acclaim with her portrayal of Maya Sarabhai, a snobbish socialite in the cult sitcom Sarabhai vs. Sarabhai, which played between 2004 to 2006. A snippet of a dialogue from that serial.
Sahil.
Hi, Mom.
Manisha, hai ghar mein?
Nahi, Mom.
To suno.
But I'm doing it.
Sahil, Manisha se shaadi karke tumne bahut badi galti ki.
Mom.
नहीं अगर तुम नहीं सुनना चाहते हो तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। But I have to tell you कि उसने मिसेस समतानी के शैंपेन पार्टी पे क्या किया। उसने दूध मांगा, वो भी मसाले वाला। और जब सब लोगों ने चीयर्स कहा तो उसने कहा चेयर्स की क्या जरूरत है, सोफा तो है ना घर में।
और फिर अपने ही जोक पे जोर जोर से हंसी।
और जब और कोई नहीं हंसा तो उसने जोक समझाया कि चीयर्स चेयर्स कुर्सी।
फिर
उसने सबके सामने चमचा मांगा।
Her sense of comic timing was absolutely outstanding, and hence she actually got roles which suited her kind of personality. Her prominent roles include coming of age romantic comedy Jaane Tu Ya Jaane Na, released in 2008, the action comedy Golmaal 3, 2010, the family comedy drama Kapoor and Sons in 2016, and the black comedy Lipstick Under My Burqa 2017. The road adventure drama Dhak Dhak, which was released last year, all of which won her nominations for the Filmfare Award for Best Supporting Actress. She also receives critical acclaim for her performances in the romantic comedies Ek Main Aur Ek Tu 2012, Khoobsurat 2014. Her performance in Amazon Prime Video's anthology film Unpaused came in 2020 around COVID time, earned her a nomination for the Filmfare OTT Award for Best Actress in a Web Original Film. And we all know the fact that she's daughter of Deena Pathak, again a very acclaimed actress.
और आज ही के दिन जन्म हुआ था मलयालम भाषा के कवि अक्किथम अछूथन नंबूथिरी का। अक्किथम नाम से ये अधिक लोकप्रिय थे। अक्किथम अछूथन नंबूथिरी को लेखन की एक सरल और आकर्षक शैली के लिए जाना जाता है। अक्किथम को सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कविता के लिए केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे कई अन्य पुरस्कार प्रदान किए गए। कविता संग्रह बाली दर्शनम के लिए उन्हें सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2009 में अक्किथम अछूथन नंबूथिरी को उनकी मलयालम कृति के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
Today is also the birthday of the Indian pop singer Alisha Chinoy, born on this day in 1965. Her indie pop albums as well as playback singing in Hindi cinema is very well known. She began her singing career with the album Jadoo in the year 1985, and by the 1990s she had become known as the queen of indie pop. Her best known songs were with producers Anu Malik and Biddu during the 1990s, and her best known song is Made in India. So let's listen to that.
चिनॉय को फिल्म बंटी और बबली के एक बहुत ही लोकप्रिय गाने कजरारे के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार 2005 में प्रदान किया गया था।
And she was introduced in the Hindi film music by veteran music director composer Bappi Lahiri. They had many disco hits together and many films in the 80s, including Adventures of Tarzan, Dance Dance, Commando, Guru, Love Love Love, etc. Another successful track in 1989 from the film Tridev, which had music by Kalyanji, Anandji and Viju Shah, also became a hit. In 1990s, Chinoy took up working in different films, collaborating with other music directors also, such as Anu Malik, Anand, Milind and Rajesh Roshan, also Nadeem Shravan. And finally, today is also the birthday of Vanessa Lynn Williams, the American singer, the actress, model, producer and dancer. She gained recognition as the first African-American woman to receive the Miss अमेरिका टाइटल विच ही ग्राउंड इन 1984।
और अब समय हो गया है, हमें कार्यक्रम यहीं संपन्न करना होगा, तो एक नई मुलाकात के वायदे के साथ अनुमति दीजिए विशाल और अनीता आनंद को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
स्टे ट्यून्ड फॉर समाचार प्रभात। अवर हिंदी न्यूज बुलेटिन कम्स अप नेक्स्ट फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज एट 8:15। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।